şeytanı recim. Radıyallahu anhum ve radu anh. Zalike limen haşiye rabbah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve barik ve sellim. Allahümme arinel hakka hakkan ve rzuknat tiba'ah ve arinel batile batilan ve rzuknat cidenabah. Rabbena zidna ilma. काफी लंबे गैप के बाद हमारी क्लास हो रही है, 2 हफ्ते बीच में ना, एक में तो हमारे सरहा प्रोग्राम था, एक में जो है इज्तिमा था, तो उसके बाद अब शुरू कर रहे हैं। तो किसी को याद है 2 हफ्ते पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जिन्होंने नोट्स लिखा था उनको फायदा होगा, जिन्होंने नहीं लिखा था, नोट्स नहीं लिखे थे तो उनको कैसे याद आएगा? उनकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्ह के बारे में बात कर रहे थे, और उनके बारे में तो बहुत सारी हमने बातें करनी थी, तो हम कौन सी वाली बात करें? किसी और से पहले पूछ रहे ना, आप तो नोट्स देख लो, उनके बारे में क्या वाली, कौन सी वाली बातें होनी? एनीवन, ऑनलाइन या ऑन साइट? जी एनीवन,
भगवान
उनके फजाइल बयान कर रहे थे, माशाल्लाह। उनकी किसके साथ निस्बत इत्तेहादी? नबी अलैहि सलातो सलाम के साथ निस्बत इत्तेहादी। निस्बत इत्तेहादी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? निस्बत इत्तेहादी का मतलब क्या होता है? निस्बत का मतलब क्या होता है? निस्बत का मतलब क्या होता है?
कनेक्शन या एक रिश्ता
रिश्ता, कनेक्शन, ताल्लुक, किसी के साथ आपका ताल्लुक होता है उसको निस्बत कहते हैं, ठीक है? तो निस्बत इत्तेहादी कौन सी वाली निस्बत होती है? इन्होंने यहाँ पे लिखा बड़े अच्छे से, मजबूत ताल्लुक, ठीक है? मजबूत नहीं होता, ठीक है, मजबूत होता है बहुत से, तो मेरा साथ रहने की वजह से निस्बत होती है ताल्लुक। तो और कोई?
के मानी जो ये कि जिससे आपको इज्जत होती है तो आप सोचते ही हल्का उसकी तरह हो जाता है आपको।
हाँ, निस्बत इत्तेहादी सबसे ज्यादा मजबूत निस्बत होती है, मजबूत, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक किसी के साथ। और इसको हमने शायद आपके सामने वो शेर भी पढ़ा था ना, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का शेर, क्या आपको शेर याद? एक हो जाना, इत्तेहाद, ठीक है ना? इत्तेहाद का मतलब भी क्या है? वहदत, इत्तेहाद, बिल्कुल मिल जाना, जैसे कहते हैं ना मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाए, इत्तेहाद हो जाए मुसलमानों में, तो क्या मतलब? सारे मुसलमान एक हो जाए, यानी जुड़ जाए बिल्कुल, ठीक है? तो इत्तेहाद का लफ्ज जो है ना, उसी से ये इत्तेहादी निकला ना। तो इसके लिए जो शेर हमने आपको बताया था ना, है तो फारसी जुबान का, लेकिन इतना मजे का शेर है कि इससे सब समझ में आ जाता है। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, कि मैं तू हो जा, मैं तुम बन जाऊं और तुम मैं बन जाऊं, ठीक है, और मैं तुम्हारा जिस्म बन जाऊं, तुम मेरी जान बन जाओ, ठीक है, यानी वी बिकम वन वन एंड द सेम, ठीक है। ताकस न गोयत बाद अजी, ताकि इसके बाद कोई ये ना कह सके मन दी गरम तू दी गरी, कि मैं कोई और हूं और तू कोई और है। लोग हमें देखें तो हमें एक ही समझें, ठीक है ना? जैसे हमें देख करके कोई और याद आ जाए, होता ना, दो लोग एक जैसे, अब्दुल्ला को देखेंगे तो इब्राहिम याद आ जाएंगे, इब्राहिम को देखेंगे तो अब्दुल्ला याद आ जाएंगे, ठीक है? किसी अंकल ने भी इज्तिमा पे कहा से, कभी तुम्हारी फोटो कॉपी कहाँ है? सही है, तो ऐसे हो जाए, हम फोटो कॉपी हो जाए किसी दूसरे के, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम के गोया के हजरत अबू बकर सिद्दीक फतान फोटो कॉपी बन गए थे। तो ये फोटो कॉपी कैसे बन गए थे? जाहिर में शक्ल तो एक नहीं हो गई थी, लेकिन आदात और अतवार और अखलाक और सीरत, हत्ता के इवन सोच जो है ना, वो एक हो गई थी चीजों के बारे में। अच्छा, ये जो सोच का एक होना और इन चीजों का एक हो जाना, ये इसमें एक बड़ी खास बात ये है, निस्बत इत्तेहादी में एक बड़ी खास बात है, ठीक है? वो खास बात ये याद रखें कि ये आप खुद से जो है ना, ये फोर्स नहीं करते किसी को कॉपी करने के लिए, ठीक है ना? ये नहीं कि आप जो है ना वो बहुत ज्यादा किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है ना वो नस्बत इत्तेहादी कहलाएगी आपके, कि आपको आप नस्बत इत्तेहादी मिल गई आपको, बिकॉज यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू बी सम टू बी लाइक समबडी एल्स। ठीक है, इसको नस्बत इत्तेहादी नहीं कहते। ठीक है, नस्बत इत्तेहादी किसको कहते हैं कि जिसमें के आप कोशिश तो कर रहे होते हैं उस दूसरे के जैसे बनने की, लेकिन वो तो हमें करना है ना, हम सब ने ही कोशिश करनी है नबी अलैहिस्सलाम जैसे बनने की, लेकिन हम सबको क्या नस्बत इत्तेहादी मिल जाती है? हम सब अपने शेख को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम सबको नस्बत इत्तेहादी मिल जाती है? नहीं, नस्बत इत्तेहादी हमें सबको नहीं मिल जाती। ठीक है ना, नस्बत इत्तेहादी इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद ऐसे मामला कर दें कि आप में और दूसरे शख्स में जिसके साथ आप नस्बत इत्तेहादी हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला खुद ऐसे मौके आपको दे दें, अल्लाह ताला खुद ऐसा मामला कर दें कि आप दोनों में लाइकनेस हो जाए, आप दोनों में सिमिलैरिटी हो जाए। ठीक है ना, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये गोया के अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है। हम मेहनत कर रहे होते हैं ना किसी चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है ना, फिर अल्लाह ताला जब खुश हो जाते हैं हमारी मेहनत से तो हमें इनाम देते हैं कि हमें वो हासिल हो जाती है, ये अल्लाह ताला का इनाम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे हजरत जी दामत रखाता हूँ, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ बहुत निस्बत अता फरमाई है। ठीक है, तो वो उनकी मेहनत है, उन्होंने सुन्नत के ऊपर अमल करने की बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, एक एक सुन्नत को किताबों से निकाल निकाल करके देख देख करके जो है ना उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते थे। तो हजरत जी को हमें तो यही गुमान है नबी अलैहिस्सलाम के साथ बहुत मजबूत नस्बत है। ठीक है, तो एक दफा क्या हुआ कि मक्का मुकरमा में आप जाते हैं ना उमरे के लिए, तो बाब अब्दुल अजीज के बिल्कुल सामने वो है जमजम टावर है। ठीक है, तो जमजम टावर के यानी अगर आप बाब अब्दुल अजीज, हरम का बाब अब्दुल अजीज उसकी तरफ डायरेक्शन करके खड़े हुए हैं ना, तो पीछे आपके जमजम टावर है, तो आपके राइट साइड पे अगर आप चले जाए ना तो एक बड़ा ओपन सा एरिया नजर आता है। ठीक है, तो वहां पर जो है ना एक होटल है या अभी भी है शायद, या पहले होता था अब नहीं है, उसका एक हॉल था। ठीक है, तो उस हॉल में जो है ना वो एक दफा कुछ लोगों ने हजरत जी का बयान रखवाया। ठीक है, कि वहां पे हम लोगों को बुलाएंगे और वहां पे हजरत का बयान होगा। तो हजरत के बयान से पहले एक अरब शेख थे उनकी बात चल रही थी, वो बात कर रहे थे। ठीक है ना, हजरत अली साबुनी इंतकाल हो गया गया उनका ना, जिन्होंने वो किताब लिखी है, सारे लोग जो है ना वो हमारे यहाँ मदरसे में उसको पढ़ते हैं आर्मी कोर्स में। तो हजरत साबुनी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो बयान कर रहे थे, तो उतनी देर में हजरत जी तशरीफ लाए कमरे के अंदर जो है ना वो दाखिल हुए। ठीक है, तो जब दाखिल हुए ना तो अली साबुनी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, उन्होंने कहा ताला अल बद्रु अलैना, ताला अल बद्रु अलैना, आगे क्या है, मिन सनियात अलबदा वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाही दा। ठीक है, तो अब ये उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि हजरत जी को देख करके वो वही बातें पढ़ना शुरू हो गए जो कि नबी अलैहिस्सलाम को देख करके मदीना तैयबा की बच्चियों ने पढ़ा था। राइट, तो अब ये हजरत जी ने तो कुछ किया तो नहीं ना इसके लिए, है कोई पहले से पैगाम तो नहीं आया, कोई ऐसे जो है वो उनको जो मैसेज तो नहीं दिया गया कि आप जो है वैसा काम कीजिएगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर डाल दिया, इसको कहते हैं नस्बत इत्तेहादी, ये अल्लाह की तरफ से मामला होते हैं। जी
किताबें दिलों के फादे में और जी के तुर्की के सफर के बारे में, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कई बार थोड़ी।
अच्छा, माशाल्लाह, हाँ मुझे याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ी थी वाली किताब। तो बहरहाल, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को ऐसी नस्बत इत्तेहादी हासिल थी, तो वो वाला आखिरी वाकया जो हमने पढ़ा था गालिबन जैद भाई की घर में जो जो आखिरी क्लास हुई थी, कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने कुफार के साथ सुलह का एक एक पीस एग्रीमेंट का फैसला किया, और वो एग्रीमेंट ऐसा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी सारी की सारी शराइत जो है ना वो कबूल कर ली, हत्ता के बहुत ही झुक करके बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से कबूल कर ली। तो उस मौके पर जो है ना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जैसे आशिक सादिक, उनको भी बात समझ में नहीं कि ऐसा क्यों किया नबी अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, तो उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ी नहीं थी, तो अभी हम वो पढ़ लेते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु जो हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के पास गए। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम के पास खुद ही गए ना, ठीक है, और आपसे हमसे पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, क्या आप सच्चे नबी नहीं है अल्लाह ताला के? नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, यकीनन मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। ठीक है, तो उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, क्या हम हक पर और क्या हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं है, यानी हम सच्चे हैं वो झूठे नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, हम यकीनन हक पर हैं और हमारे दुश्मन जो है ना वो झूठ पर है। तो उन्होंने पूछा, फिर हम दीन में इस जिल्लत को क्यों बर्दाश्त करें ना, हम क्यों इतना ज्यादा जो है वो झुक के सुलह करें, हम क्यों बर्दाश्त करें? तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिला शुबा मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, ठीक है, और वही मेरा मददगार है, मेरा नासिर है, मेरा परवरदिगार है। तो भाई ये तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला है, मैं इस वजह से काम करूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर उमर अल्लाह ताला ने आगे एक और सवाल पूछा कि क्या आपने कहा नहीं था कि हम बैतुल्ला जाएंगे, हम बैतुल्ला जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था ना कि उमरा कर रहे हैं और हलक कर रहे हैं, और कोई अपने बाल कटवा रहा है, कोई हलक करवा रहा है, कोई कसर करवा रहा है। तो इन्होंने पूछा कि क्या आपने कहा नहीं था कि हम यानी बैतुल्ला जाएंगे? तो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें ये तो कहा था, लेकिन मैंने क्या ये भी कहा था कि हम इसी साल जाएंगे? ये तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें, ठीक है। तो उमर ने फरमाया कि हाँ, आपने तो वाकई ये तो नहीं कहा था। तो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम बैतुल्ला जाओगे और उसका तुम तवाफ करोगे, इतना आपसे फरमा दिया, ठीक है। अब उमर रज़ियल्लाहु जो है ना वहां से निकले, अभी भी ना वो जो उनके जज्बात थे ना वो कंप्लीटली काबू में नहीं आए थे, ठीक है, और उनका एक कुछ इश्काल कुछ जो है ना वो जहन में बात रह गई थी, ठीक है। तो उमर रज़ियल्लाहु जो है वो सीधा फिर निकल करके गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के पास, ठीक है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु से फिर कहने लगे कि क्या आप नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी नहीं है, क्या नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी नहीं है? तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि हाँ, यकीनन नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं। फिर पूछने लगे, क्या हम हक पर और हमारे दुश्मन बातिल पे नहीं है? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि हाँ, बेशक हम हक पर हैं और हमारे दुश्मन बातिल पर हैं। तो उन्होंने वही सवाल किया कि फिर हम दीन में इतनी जिल्लत क्यों बर्दाश्त करें, ठीक है, हम जो है वो काबतुल्ला जाना चाहते हैं, उन्होंने हमारे रास्ते को रोक लिया, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें लड़ने भी नहीं दिया जा रहा, और हम जो है वो उनकी शराइत जो है वो सारी की सारी कबूल कर रहे हैं, हम क्यों बर्दाश्त कर लें? तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि बिलाशुबा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते, यानी आप वही कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है, ठीक है, और अल्लाह ही उनका नासिर मददगार है, यानी वही अल्फाज जो है वो अबू बकर सिद्दीक ने भी यही कहे हजरत उमर रज़ियल्लाहु को। फिर उसके बाद उमर ताला ने उनसे भी एक सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्ला जाएंगे और उसका तवाफ करेंगे? अबू बकर सिद्दीक ने बिल्कुल यही यही जवाब दिया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि हम इसी साल बैतुल्ला जाएंगे, ये तो नहीं कहा था, ठीक है। तो दोनों की ख्यालात भी सेम थे। अब ये तो नहीं था कि वहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि भाई मैंने ये जवाब दिए हैं उमर को, तुम भी यही जवाब देते रहो, ऐसा तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने ऊपर से दोनों के ऊपर जो है ना वही वाले ख्यालात और वही वाले जवाबात नाजिल फरमा दिए, ठीक है ना, और उन्होंने वही उमर दोनों को जवाब दे दिए। इसको कहते हैं नस्बत इत्तेहादी, ठीक है। इसके बाद फिर चंद और वाकयात भी हम पढ़ते हैं। और पीछे हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह के ये वाले वाकयात पहले भी पढ़े थे कि जब ताइफ से कबीला सकीफ का एक वफद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में कबूल इस्लाम के लिए हाजिर हुआ था ना, तो उस वक्त उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम मुसलमान तो होते हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप हमें जो है ना वो नमाज की एक्सक्यूज दे दें, बाकी सारे काम हम करेंगे। भाई क्या हो रहा है, मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना किस वजह से? तो नमाज की हमें जो है ना छुट्टी दे दें, सही है। तो नबी रसूल ने कह दिया था कि नहीं, नमाज के बगैर तो कोई दीन ही नहीं, ठीक है ना। पीछे भी हम ये बात पढ़ चुके हैं, सुन्नत सीरत में भी पढ़ चुके थे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ऑफिस सीरत अबू बकर सिद्दीक में भी ये बात दोबारा पढ़ चुके थे। तो नबी रसूल ने मना कर दिया उनको, नहीं। तो उसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक के पास भी लोग आए थे कि जी हम जो है ना वो सब कुछ करेंगे लेकिन हम बस जकात नहीं देंगे, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने भी बिल्कुल यही फरमाया था कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां नमाज का हुक्म दिया है वहीं पे जकात का भी हुक्म दिया है। तो जिस तरह नमाज के बगैर दीन नहीं हो सकता, उसी तरह जकात के बगैर भी दीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर तुम जकात नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ जिहाद करूंगा, तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। ठीक है, अच्छा और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सारी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक दो और पढ़ लेते हैं चंद एक। कि हज का मामला क्या हुआ कि जब हज फर्ज हुआ तो सबसे पहला हज जो है वो किसने करवाया, किसने लीड किया पहले हज को, किसी को याद है?
जी
सबसे पहला हज जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक उन्होंने लीड नहीं किया, ठीक है, बल्कि हाँ
जी
नहीं, अभी तो हम नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहला हज जो है ना उनका नाम असल में मुझे भी याद नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था कि जब मक्का मुकरमा फतह हुआ था 8 हिजरी में, तो वो तो रमजान मुबारक का वक्त था ना, ठीक है, फिर वहां से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ चले गए थे कबीला हवाजन वगैरह से लड़ाई के लिए, और फिर जो है वो आप वापस आ गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मक्का मुकरमा का वाली मुकर्रर किया था, ठीक है ना, अपना गवर्नर, अपना रिप्रेजेंटेटिव मक्का मुकरमा में उनको मुकर्रर किया था कि तुम जो है ना यहाँ के अमीर हो गए मक्का मुकरमा के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्होंने हज करवाया था, पहला हज जो है ना वो 8 हिजरी में उन सहाबी ने करवाया था जो कि मक्का मुकरमा में नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा या उनके रिप्रेजेंटेटिव बने थे। ठीक है, 9 हिजरी के अंदर फिर मदीना तैयबा से नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत को भेजा था, ठीक है ना, अमीर हज बना करके, सही है, और ये भी कहा था कि हमें भी दुआ में याद रखना। बहरहाल, तो अबू बकर सिद्दीक जो है वो 9 हिजरी में अमीर हज बने थे, और फिर 10 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए हज्जुल वदा के मौके, विदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम अमीर बने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 9 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक था उनको अमीर हज बनाकर भेजा, और दूसरे साल 10 हिजरी में खुद तशरीफ ले गए। अच्छा, जब अबू बकर सिद्दीक खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए तो उन्होंने पहले साल हजरत उमर हजरत को अमीर हज बनाकर भेजा और दूसरे साल खुद तशरीफ ले गए। ठीक है, यानी बिल्कुल वही तरतीब, नबी अलैहिस्सलाम जब अमीरुल मोमिनीन थे, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खलीफा को पहले साल हज का अमीर बना करके भेजा और अगले साल खुद अमीर बनकर गए, और जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने भी अपने खलीफा को यानी अपने बाद आने वाले को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर हज बना करके भेजा और अगले साल खुद तशरीफ ले गए हज के। ठीक है, तो बिल्कुल वही तरतीब इन्होंने भी फॉलो करी जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने किया था। अच्छा, इसके बाद इन दोनों के दरमियान जो मुशाबियत है ना उसमें जो इनकी औलादों में भी मुशाबियत आई, इनकी औलादों में भी सिमिलैरिटीज थी, तो उसके बारे में चंद बातें पढ़ते हैं कि ये हैरत अंगेज बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक में इवन उनके औलादों में और ससुराल में और दामादों के मामले में भी मुशाबियत है। ठीक है, एक तो अपनी औलाद होती है ना, बेटा बेटी, ठीक है, फिर एक होते हैं आपके दामाद यानी बेटी के शौहर, नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां ही थी, बेटों का तो बहुत ही कम उम्र के अंदर इंतकाल हो गया था, उनकी तो शादी की उम्र में नहीं पहुंचे थे कोई भी बेटा, लेकिन बेटियां जो है वो सारी की सारी शादी की उम्र में पहुंची थी, उनकी शादियां हुई थी, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के दामाद थे, नबी अलैहिस्सलाम की कोई बहू नहीं थी, दामाद थे। ठीक है, तो दामादों में मुशाबियत कैसे हुई कि नबी अलैहिस्सलाम के दामाद कौन थे, कौन कौन थे अली रतान के अलावा?
सालों
उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, ठीक है ना, और एक अबुल आस भी थे जो कि हजरत सैयदा जैनब रज़ियल्लाहु के शौहर थे अबुल आस, फिर उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु जो है वो दो बेटियों के शौहर बने थे, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, और फिर जो चौथी बेटी थी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु, उनके जो शौहर थे हजरत अली रज़ियल्लाहु थे। ठीक है, तो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दामाद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु और सैयदना अली रज़ियल्लाहु दोनों के दोनों साबिकून अव्वलून में थे, बिल्कुल पहले पहल मुसलमान होने वाले उनको साबिकुन अव्वलून कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये दोनों के दोनों जो हैं वो और क्या क्या थे, और कौन कौन से इनके फजाइल हैं, उस्मान रज़ा अली रज़ा उनके अशरा मुबशरा में भी थे, ठीक है, खलीफतुल मोमिनीन में भी थे, अशरा मुबशरा में भी थे, ठीक है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद कौन थे, ये हजरत सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, ये अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी थी, उनके शोहर हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये भी साबिकून अव्वलून में से थे, ठीक है, सादात मुहाजरीन में भी थे, जिस तरह से उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो मुहाजरीन में थे और सरदारों में से थे मुहाजरीन के, उसी तरीके से जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी सादात मुहाजरीन में से थे, अशरा मुबशरा में से भी थे, ठीक है। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम के दूसरे दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अच्छा ये तो हो गया ये दामादों का मामला, ठीक है, तो दामादों में भी सिमिलैरिटी। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि ये सैयदतुन्निसाइल जन्ना, ठीक है, कि ये जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये अफजलुन्निसा है, ये औरतों में सबसे ज्यादा अफजल, ठीक है, फरमाया कि तमाम औरतों पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत ऐसे ही है जैसे तमाम खानों में सरीद को फजीलत हासिल है, नबी अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। सरीद क्या होता है, सरीद किस खाने को कहते हैं,
रोटी
हाँ जैसे शोरबा हो, शोरबे के अंदर आप रोटी के टुकड़े तोड़ करके डाल दें और फिर उन टुकड़ों को उठा उठा करके खाएं, ठीक है, हम ये काम भी कर सकते हैं, जब कोई शोरबे वाला सालन बने तो उसके अंदर रोटी के टुकड़े डाल दें और फिर चम्मच से खा लें या ऐसे ही उठा के खा लें, खुसूसा निहारी के अंदर हम ये काम कर सकते हैं और लोग करते भी हैं, ठीक है, कि तंदूरी रोटी है ना उसके टुकड़े तोड़ तोड़ करके निहारी में डाल देते हैं और फिर उसको सरीद समझ करके खाते हैं, तो हमारी सरीद भी निहारी होती है, ठीक है, माशाल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत ज्यादा पसंद, ठीक है, तो आयशा सिद्दीक़ा को सरीद से मुशाबहत दी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मुशाबहत लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में बहुत तंग दस्ती का हाल था, बहुत ही ज्यादा गुर्बत थी, ठीक है ना, और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो सारे काम वो खुद करती थी, हत्ता कि उनके हाथों के अंदर जो है ना वो बड़े गट्टे पड़ जाने जिसको कहते हैं, यानी हार्ड स्पॉट्स बन जाते हैं, अब बहुत ज्यादा जब काम करते हैं, चक्की पीसते हैं उसके अलावा सारे काम करते हैं, और आपको पता है कि शुरू में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास गई थी कि भाई बांदियां आ रही हैं, जिहाद में हमें फतह हो रही है, तो दुश्मनों के घरों से आती हैं बांदियां, तो वो फिर वो मुसलमानों में तकसीम कर दी जाती थी घरों में काम करने के लिए, तो फातिमा तारा ने जब आपसे समझ जाकर गुजारिश करी तो आपसे फरमाया कि नहीं तुम जाकर के जो है ना वो इतनी मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अलहमदुल्ला पढ़ लिया करो, 34 मरतबा जो है वो अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। तो शुरू में तो नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ही मना कर दिया था, बाद में जाकर के फिर उनको मिली थी कोई काम करने वाली, ठीक है, अली रतान के पास कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, वो बस लड़ना जानते थे, उनको लड़ाई हर्ब हर्ब और हर्ब, राइट, हर मतलब लड़ाई हर लड़ाई, तो वो बस माशाल्लाह थे ऐसे, तो उनके घर में बहुत ज्यादा तंगदस्ती थी। और इसी तरह से नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान की जो बेटी अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी ना, उनके घर में भी यही हाल था, जुबैर रतान भी जो है ना वो भी कमाई वमाई में ज्यादा नहीं थे, तो अस्मा रतान के घर में भी बहुत ज्यादा तंगदस्ती थी, उनको भी कामों में बहुत मशक्कत उठानी पड़ती थी, घोड़े को चारा खिलाती, फिर उसके बाद जो है ना डोल से पानी निकालती, पानी लेकर के घर में आती, आटा गूंथती थी, पानी भरती थी, और 1 फरलांग से जाकर के खजूर की घुटलियां सर पर लाद कर घर लाती थी। एक मरतबा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी तरीके से ना अपना सामान लेकर के सर के ऊपर रख करके घर तशरीफ ला रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से ना गुजर रहे थे अपने कुछ सहाबा के साथ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ से आ रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, जवाब दे दिया, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आगे बढ़ गए। गालिबन नबी अलैहिस्सलाम ने अस्मा रज़ियल्लाहु को ये फरमाया या बाद में जुबैर रज़ियल्लाहु को फरमाया, ठीक है, कि अगर मुझे जुबैर की गैरत की फिक्र ना होती ना कि जुबैर कितना गैरतमंद है, तो मैं अस्मा से कहता कि हमारे किसी ऊंट के ऊपर आकर के बैठ जाओ। लेकिन जुबैर की गैरत की वजह से मैंने अस्मा को ये नहीं कहा कि ऊंट पर सवार हो, क्योंकि बहरहाल अलग ही ऊंट के ऊपर सवार होते हैं, लेकिन फिर भी मर्दों के साथ जो है वो जाना होता, तो इतना सामान उठा के लेके जा रही है इतना जा, लेकिन शौहर की गैरत, ठीक है, उसके ऊपर। हाँ, जुबैर रतन को ही फरमाया था, तो जुबैर रतन फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके मामले में क्या गैरत आनी आपसे कोई थोड़ी मैंने गैरत करनी, ठीक है। बहरहाल लेकिन अभी ने इसको फिक्र इसकी फिक्र फरमाई। जी
जो जिनके बारे में उन्हें
हाँ, ज़ुन्नताक़ैन, तो अस्मा रहता जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना वगैरह बनाती थी, तो अबू जहल इनके पास आया, यानी जब हिजरत का सफर था ना, तो अबू जहल इनके पास आया था, उनको कहा था कि मुझे बताओ कि तुम्हारे नबी कहाँ है, ये वापस आ रही थी खाना वगैरह दे करके, तुम्हारे नबी कहाँ है, कहाँ है तुम्हारे वालिद कहाँ है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो उसने जो है वो इतना जोर से इनको थप्पड़ मारा कि जा करके गिरी और उनको चोट लगी ना, पत्थर से जाकर इनका सर लग, इनका चेहरा लगा तो उनको चोट लगी और खून वगैरह निकलना शुरू हुआ। मैंने कहा तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं बताऊंगा। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के ना वहां से चला गया फिर उसके बाद। अच्छा, और नवासों में ये तो हो गए ना, दामादों में मुशाबहत नबी अलैहिस्सलाम वगैरह से होता है उनके, फिर बेटियों में मुशाबहत, ठीक है, फिर उसके बाद नवासों में मुशाबहत। नबी अलैहिस्सलाम के नवासे जिनका ज्यादा जिक्र आता है वो कौन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला, ठीक है, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के नवासे कौन, आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की तो औलाद ही नहीं थी, ठीक है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला, ये नबी, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के नवासे थे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान मुशाबियत क्या हुई कि ये दोनों जो है ना, फिर इनकी जिंदगियों के अंदर एक ऐसा मौका आया कि जिसमें मुसलमानों के अंदर ही जो है ना वो इख्तलाफात कुछ पैदा हो गए, ठीक है, और कुछ लोग जिनके ऊपर के लोगों का इतमाद इतना नहीं था कि वो खिलाफत फाइज हों और उनको जो है वो हुकूमत मिले, तो उन लोगों के साथ जो है ना इनका फिर इख्तलाफ हो गया। लोगों ने इनको कहा कि भाई आपको खलीफा बनना चाहिए, आप नेक हैं, आप जो है वो सहाबी की औलाद हैं और आप हैं और आपको बनना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग जो है वो जो उनको बनाना चाहते, दूसरों को बनाना चाहते थे, तो इस तरह का जो है ना कुछ इख्तलाफ हो गया था। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फिर जैसे यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था। यजीद कौन था, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा, ठीक है, तो उसकी बैत करने से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इनकार कर दिया था। उसी तरीके से ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इन्होंने भी एक मौके पर यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इन दोनों के ही फिर खिलाफ बाकायदा फौजी एक्शन हुआ था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का। आपको पता है कि वो फिर करबला के मुकाम पे जब पहुंचे थे तो उनके ऊपर जो है वो फोर्सेस ने अटैक किया था, वो शामी फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो मुसलमानों का जो जो कैपिटल था, जो दारुल खिलाफा था, वो मदीना मुनव्वरा से मूव करके दमिश्क में बना दिया गया था, ठीक है। शुरू में अबू बकर सिद्दीक के जमाने में मदीना मुनव्वरा ही मुसलमानों का दारुल खिलाफा था, फिर उमर रज़ी के जमाने में भी ऐसे ही रहा, उस्मान गनी रज़ी के जमाने में भी ऐसे ही रहा, ठीक है, अली रतान के जमाने में भी, अली रतान ने कूफा में मुंतकिल कर दिया था ना, और फिर जो मुआविया रतान बने थे तो उन्होंने जो है ना वो दमिश्क में फिर कैपिटल बना लिया था। तो अब दमिश्क जो था वो क्या था, वो सीरिया, वो शाम का इलाका था, ठीक है, तो वहां पे ना बहुत सारे लोग नए नए मुसलमान हुए थे, और उनमें जो है ना वो बहुत सारे फिर मुनाफिक टाइप के लोग भी आ गए थे, ठीक है, जिन्होंने यहूदियों ने भी उनको इंस्टॉल कर दिया था मुसलमानों के अंदर ताकि मुसलमानों में खराबी पैदा करें, और जो है वो ऐसे भी लोग थे जो कि नए थे, उन लोगों के दिलों में वैसा ईमान नहीं आया था, वैसे जो है वो पक्के वो हो ही नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फितना वगैरह क्रिएट कर रहे थे मुसलमानों के दरमियान, ठीक है, तो उनको ना फिर शामी लोग कहा जाता है, शामी, ये शामिल हो गए, शाम के रहने वाले लोग हैं। इन्होंने जो है ना फिर हुसैन रतान के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा उन्होंने जुल्म का मामला किया था। और इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रतान के खिलाफ भी ऐसी जो है लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी। दोनों ने खिलाफत का ऐलान भी किया था, उनके हाथ पे लोगों ने बैत भी करी थी, लेकिन बिलाखिर जो है वो उनकी खिलाफत खत्म हो गई। ठीक है, अब्दुल्ला बिन जुबैर रतान जो है ये तो काफी अरसा मक्का मुकरमा के अंदर बाकायदा खलीफा बनकर के इन्होंने हुकूमत भी करी थी। इन्होंने अपना दारुल खिलाफा, अपना कैपिटल जो है ना वो मक्का मुकरमा को बना लिया था। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली फिर जो हज्जाज बिन यूसुफ की फौजें थी उसने बाकायदा मक्का मुकरमा के ऊपर अटैक किया था और इनके सारे साथियों को पहले शहीद किया, उसके बाद फिर खुद अब्दुल्ला बिन जुबैर रतान को भी शहीद किया। उसी तरह से हजरत हुसैन रतान का भी मामला हुआ कि उनके भी सारे साथियों को जो है पहले शहीद किया गया और उसके बाद फिर हजरत हुसैन रतान को शहीद किया गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हुई हैं, एक बात याद रखें। ठीक है, ऐसी चीजें भी हुई हैं, ये बिल्कुल इब्तदाई जमाना, ठीक है, कि जिसके अंदर मुसलमानों के आपस में ही कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे और गलत किस्म के लोग जो है ना वो एंटर हो करके फिर उन्होंने मुसलमानों के इख्तलाफात को और भी ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, और बाकायदा मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयां भी हुई। ठीक है, और जो है वो ऐसे ऐसे अजीम लोगों को शहीद भी किया गया। ठीक है, कौन? नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हुआ है। अब आपसे अगर हम ये पूछें तो इस से हमें क्या सबक हासिल करना है? ठीक है, हमारे लिए क्या इसके अंदर लेसन लर्न्ड है कि मुसलमानों की हुकूमत बन गई? अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जो है पूरा का पूरा आपका जजीरतुल अरब वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। उमर रजाने के जमाने में जो है वो आपको पूरा इराक से लेकर के जो है वो लीबिया तक मुसलमान हुकूमत बन गई। फिर उस्मान रज़ा के ज़माने में और भी ज़्यादा फैल गई, सिंध तक मुसलमानों की हुकूमत बन गई। और वेस्ट की तरफ जाएं तो पूरा मोरक्को, मोरिटानिया यानी अटलांटिक ओशन तक जो है वो मुसलमानों की हुकूमत बन गई। ठीक है, और उसके बाद अली रज़ा का ज़माना आया, तो अली रज़ा के ज़माने में फितने 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 लड़ाइयाँ हैं ना, ये रवाफिज का फितना शुरू हुआ, ये खवारिज का फितना शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा मुसलमानों के आपस में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हुई। ठीक है ना, और फिर ये चीज आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक नौबत आई कि हजरत हुसैन हजरत आनन को शहीद किया गया, नॉन मुस्लिम से शहीद नहीं किया बल्कि मुसलमानों में ही ये सब कुछ हुआ। ठीक है, और उसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ान को भी शहीद किया गया, और किसने शहीद किया? मुसलमानों ने शहीद किया, गैर मुस्लिमों ने शहीद नहीं किया। ठीक है ना, तो मुस्लिम हुकूमत जो थी उसके अंदर ये सारी चीजें भी शुरू हो गई। तो अब हमारे लिए क्या इसके अंदर सबक है, क्या हमारे लिए इसके अंदर लेसन है? पहले इन्होंने लिखा था तो उनका जवाब पढ़ लेते हैं। इनके जवाब नहीं था, इनके कोई बेकार सवाल था, इसको नहीं पढ़ता हूँ जी। या इनको सीखना चाहिए? नहीं, इन तो हमें वैसे ही सीखना चाहिए, फितनों कम ठीक है, मतलब ये फितने कम इल्मी की वजह से हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कम इल्मी की वजह से, बल्कि ज्यादा इल्मी की वजह से हुए। ये जो फितने होते हैं ना ये ज्यादा इल्मी की वजह से होते हैं, कम इल्मी की वजह से ये वाले फितने नहीं होते जी। अशरा इज्तेबा इज्तेहाद। ओके, क्या कह रहे हैं आप?
दो लेसन मिल सकते हैं। पहले तो एक टेस्ट दुनिया में कोई ये नहीं होता कि एक ही चीज ऊपर रहेगी, सो ऊपर हर चीज होती रहती है। पहले लेसन जो ये हमारे लिए, और दूसरा ये कि क्योंकि हमारी असल मंजिल दुनिया में नहीं आती रहती, तो बेहतर है कि हम लोग दुनिया में से ज़्यादा अपने आखिर पर फोकस करें।
बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया कि इससे हमें ये सबक मिलता है और ये बात हमें यानी दोहराई जाती है, ये बात हमारे सामने फिर से खुल करके हमारे सामने ये बात आती है कि भाई ये जो दीन है ना, दीन दीन है इस्लाम, ठीक है ना। ये दीन इस्लाम जो हमें अल्लाह ताला ने पहुंचाया है अपने नबियों के वास्ते से, ये हमें पहुंचाया है आखरत की कामयाबी के लिए, ठीक है ना। आखरत में अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए, हमसे राजी हो जाए, ठीक है ना। दुनिया के अंदर हर तरह के हालात आएंगे, दुनिया के अंदर आपको दुनियावी कामयाबियां भी मिलेंगी, दुनिया के अंदर आपको दुनियावी नाकामियां भी मिलेंगी, दुनिया के अंदर लोग आपके साथ दोस्ती भी करेंगे, दुनिया के अंदर लोग आपके साथ दुश्मनी भी करेंगे, ठीक है ना। आपके अपने भी आपके साथ दुश्मनी कर सकते हैं, गैर भी आपके साथ दुश्मनी कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गैर आपके दोस्त बन जाए और अपने आपके दुश्मन बन जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने दुश्मन बन जाए और गैर आप में तो अपने दोस्त बन जाए और गैर दुश्मन बन जाए, लेकिन गैर भी कभी दुश्मन बन सकते हैं और अपने जो है वो तो गैर जो है वो दोस्त बन सकते हैं, अपने जो है वो दुश्मन बन सकते हैं। तो दुनिया के अंदर ये सारी चीजें चलती रहती हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमने इस दीन को पकड़ करके रखना, हमने अल्लाह के हुक्मों के ऊपर हर हाल में अमल करना। ये नहीं देखना कि अभी जो है ना वो हुकूमत यानी बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है तो चलो मैं दीन पे अमल कर लेता हूँ, कल को जो है ना वो नाकामी होनी शुरू हो गई तो मैं दीन को छोड़ दूंगा, है ना। लोग जो है वो मेरी वाह वाह करेंगे तो मैं दीन पे अमल करूंगा, लोग जो है ना वो मुझे दीवाना कहना शुरू कर देंगे, लोग जो है वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मैं दीन को छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये नहीं है, ये दीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। दीन जो है वो अल्लाह की रजा और आखिरत की जगह, अल्लाह की रजा और आखिरत की जगह की आखिरत की जजा, ये है दीन। इसके अलावा कुछ भी दीन नहीं, इसके अलावा अगर आप इसको छोड़ देंगे, आपने शायद बयान में कभी मुझे बहुत कभी तो खैर नहीं अक्सर गुस्सा होते हुए देखा होगा, सबसे ज्यादा गुस्सा होते हुए कब देखा है अगर आपको याद हो सबसे ज्यादा गुस्सा होते हुए, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा गुस्सा होते हुए आपने उस वक्त देखा होगा कि जब ये फकीर कहता है कि वो कितना गंदा दीन है, कि वो कितना गलीज दीन है, वो कितना नापाक दीन है, कितना बुरा दीन है कि जिसके अंदर सब कुछ है सिवाय अल्लाह के, नहीं? जिसके अंदर सब कुछ है सिवाय अल्लाह के। सब कुछ है से क्या बुरा बताएं जी, क्या क्या होता है सिवाय अल्लाह के, और क्या क्या होता, क्या होता है हमारे दीन में बताएं जी।
टोपी
टोपी होती है, ये टोपी क्या है, ये शायर इस्लाम में से है ना, ये दीन का एक एक, एक शायर है ये, ठीक है ना। लोग देख करके समझते हैं ये मुसलमान है, इसको शायर कहते हैं, जिससे दीन याद आए। टोपी, दाढ़ी, और बताएं जी, रोजा, हज, निमाज, और दिल, तो हाँ ठीक है, जुब्बा राइट, जुब्बा भी है, और बताएं जी क्या, कुरान, हाँ कुरान भी आप हो सकता है, अल्लाह के बगैर कुरान भी हो सकता है, अजीब मतलब हम अल्लाह के बगैर कुरान भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो, और कितनी देर हो गई तो ये नहीं है ना, ठीक है। तो भाई हालात आते रहते हैं, आज जो है वो आपके सारे लोग खिलाफ हैं, आप जो है वो दीन पे अमल करने को कोई पसंद नहीं करता, आपकी क्लास 2:30 शुरू होती है, हाँ सॉरी। तो आज क्या है, हम जो है वो इतना दीन 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 है ना, दाढ़ी भी उगा लेते हैं और बुरका भी पहन लेते हैं और बहुत सारे काम भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब तक जो है वो लोग हमारी हेल्प करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा दीन लगता है, बड़ा दीन के अनुमान करते हैं, लेकिन हम कभी किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे मुखालिफ लोग आ जाते हैं, ठीक है, और वो कहना शुरू कर देते हैं क्या कर रहे हो तुम, बेकार हो, किस कुछ क्या कर रहे हो तुम, ये बेवकूफी की बातें कर रहे हो, ये कोई थोड़ी होता है, इतना भी कोई थोड़ी होता है, ठीक है ना। फौरन जो है ना वो हम छोड़ देते हैं सारी चीजों को, ठीक है ना, फौरन हम उससे मुतासर हो जाते हैं, हम फौरन जो है ना वो दीन पे अमल करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वही जो है वो जब इज्तमा में जाते हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा दीन 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 दीन, और जब फैमिली में जाते हैं तो सारा दीन हमारा खत्म हो जाता है। क्या मतलब भाई, क्या नक्शबंदी इज्तमा के अंदर अल्लाह था और घर के अंदर अल्लाह नहीं होता है, राइट। नक्शबंदी इज्तमा में जो है वो आखिरत की फिक्र थी और जो है वो जॉब पे गए वहां पे आखिरत की फिक्र खत्म हो गई, या फैमिली में जाएंगे तो वहां पे आखिरत और अल्लाह ताला जो है वो खत्म हो जाएंगे, वहां पे नहीं होंगे, ठीक है ना। और जब तक जो है वो ना दीनी प्रोग्राम हो रहे हैं तो उस पर अल्लाह भी याद आ रहा है और उस पर आखिरत भी याद आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर जगह है, ठीक है ना, और आखिरत जो है ना वो हर एक के लिए है, हर एक ने मरना है और हर एक ने आखिरत के अंदर पहुंचना है, अपना हिसाब किताब देना है, ठीक है। तो ये बात याद रखें, ये सारी चीजें होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं। लोगों ने नबी के नवासे को तो क्या कत्ल करना था, राइट, अबू बकर सिद्दीक के नवासे को क्या कत्ल करना था, लोगों ने तो नबियों को कत्ल कर दिया था, राइट, लोगों ने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी कत्ल कर दिया था, ठीक है ना। तो हम कहेंगे उन लोगों की बात हो गई, वो जिब्रील जो है वो बचाने के लिए नहीं आए, वो भाई वो शहीद हो अल्लाह ताला के मकबूल हो गए, ठीक है, नवासे रसूल वो शहीद हो अल्लाह ताला के मकबूल हो गए, नवासे सिद्दीक हसन वो शहीद हो अल्लाह ताला के मकबूल हो गए, असल तो अल्लाह ताला के मकबूलियत चाहिए ना हमें, ठीक है। तो इन चीजों से बिल्कुल भी परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई कामयाबी मिलेगी तो मैं दीन पे अमल करूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं दीन पे अमल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो है वो मुशाबहत इनकी औलादों के दरमियान हुई, और फिर उसके बाद एक दो और मुशाबहतें जो है वो हजरत ने लिखी हैं, वो हैं इरशादात कुरानी व अलकाबात रब्बानी, कि नबी अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु में बाहमी तवाफुक व तशाबो और मुताबिकत व वहदत की इंतहा ये है कि इरशादात कुरानी व अलकाबात रब्बानी में भी इसकी झलक मौजूद, यानी अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में भी जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें दोनों हजरात के बारे में फरमाई है जो कि दोनों में मुशाबहत बताती हैं। तो जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, अना अतका वुल्द आदम, कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे ज्यादा तकवा वाला हूँ, तकवा वाला हूँ, वह अकरमा वाला फखर, ठीक है, और अल्लाह ताला के नजदीक मैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ, और इसमें कोई मैं फखर नहीं कर रहा, बस ऐसा ही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ए फैक्ट कि मैं सबसे ज्यादा मुत्तकी हूँ और मैं अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एज ए फैक्ट, वला फखर, मैं फखर नहीं कर रहा इसके ऊपर, मैं कोई तकब्बुर नहीं कर रहा इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई थी कि जो अल्लाह ताला उनको बताएं वो आगे उम्मत को बताएं, ठीक है ना, तो ये चीज बतानी जरूरी थी, ठीक है। अब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, ठीक है, कि अनकरीब वो बचा लिया जाएगा जो कि सबसे ज्यादा मुत्तकी है, अतकल्लज़ी, ठीक है। ये जो आयत नाजिल हुई है, ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि ये आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई, ठीक है, अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, कि जो कि अपने माल को जो है ना वो तज़किया हासिल करने के लिए खर्च किया करते थे, ठीक है। तो अत्ता का लफ्ज अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ बताया, अल्लाह ताला ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम को अत्ता, और अल्लाह ताला ने ही अत्ता का लफ्ज जो है वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी इस्तेमाल किया। अच्छा, एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने दोनों को अपनी खुशी की बशारत दी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, ठीक है, कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें अता करेगा और वो तुम्हें राजी कर देगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएं, ठीक है, अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अच्छा, उसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से यही फरमाया, उनके बारे में भी फरमाया, वला सौफ यरदा, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा, यही जो कि वैसे वैसे जन्नबु हल अतकल लजी उति मालहु यतज़क्का व माल अहद इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला वला सौफ यरदा, ठीक है, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा, कौन राजी हो जाएगा, अबू बकर सिद्दीक राजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आयत, ये जो सूरत है ना, सूरह अलम नशरा से पहले वाली सूरह दुहा, राइट, सूरह दुहा ही है ना, तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इसके अंदर लिखा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा सिमिलैरिटी दोनों के दरमियान
नहीं
सूरतुल्लैल, हाँ दुहा तो वह तो ये सूरतुल्लैल के अंदर, सही है, तो इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी दोनों हजरात के दरमियान। तो ये जो, बस यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, कि ये जो इनको मिली ना नस्बत इत्तेहादी, ये किस वजह से मिली, इन्होंने अपने आप को फिना कर दिया, बात कहाँ से शुरू हुई थी किसी को याद है, ये जो सारी बातें हमने शुरू करी थी, ये शुरू कहाँ से करी थी, कैसे शुरू करी थी ये बात?
तो
नहीं 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 आज की क्लास की शुरुआत की बात नहीं कर रहा है, ये जो अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान जो निस्बत इत्तेहादी की डिस्कशन जहां से शुरू हुई थी, शुजा के घर में शुरू हुई थी। नहीं मुझे याद है, ठीक है, तो वो कहां से शुरू हुई थी, मुस्तफा जवाब देना चाह रहे थे। ये डिस्कशन सारी की सारी नफ्स से शुरू हुई थी, ठीक है, वो क्या थी थोड़ी सी तफसील उसकी।
पीछे
हाँ
रास्ते
आयत क्या थी? नासियतन काज़िबतन खातिया, ठीक है, कि अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उसकी जो ये नासिया है ना, ये ठीक है, ये जो है वो बड़ी झूठी है और बड़ी गुनाहगार है, ठीक है। तो अब ये जो जगह है इसके बारे में मशायख ने भी फरमाया और आज के दौर के साइंसदानों ने भी फरमाया है, उन्होंने भी कहा, ठीक है, कि ये जो जगह होती है ना, इसके पीछे इंसान के ब्रेन का वो वाला हिस्सा होता है कि जो कि उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मशायख ने फरमाया कि इसी जगह को लतीफा नफ्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने बात यहां से शुरू करी थी कि इस नफ्स को जब हम बिल्कुल फिना कर देते हैं ना, जब हम खत्म कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जबरदस्त किस्म की हिम्मत, ताकत और अजमत अता फरमाता है इंसान को, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह उन्होंने अपने नफ्स को जो है वो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम के सामने फिना कर दिया था, तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत और हौसला भी सबसे ज्यादा अता फरमा दिया, ठीक है ना। और दूसरी अल्लाह ताला ने उनको क्या नेमत अता फरमाई कि इनको अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत इत्तेहादी अता फरमाई, ठीक है ना। या ये आप उसको भी पहली नेमत भी कह सकते हैं, इसको दूसरी नेमत के नस्बत इत्तेहादी अता फरमा दी, तो जैसा हौसला और हिम्मत नबी अलैहिस्सलाम के अंदर थी, वैसा ही हौसला और हिम्मत जो है वो अबू बकर सिद्दीक को भी अता हो गई, क्योंकि दोनों के दरमियान नस्बत इत्तेहादी। लेकिन इसकी वजह क्या बनी थी? अपने आप को कामिल फिना कर देना, इतना कि नबी रसूल फरमाया कि अगर कोई देखना चाहे किसी मुर्दे को जमीन पर चलता हुआ, है डेड मैन वॉकिंग राइट, तो वो इब्ने अबी कहाफा को देख रहे। इब्ने अबी कहाफा अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि उनके वालिद का नाम अबू कहाफा था, तो वो जब चलते थे ना तो ऐसे लगता था जैसे कोई मुर्दा इंसान चल रहा है, यानी ऐसा जैसे कि जान ही नहीं है इतनी बॉडी के अंदर, इतना आज ही इनके सारी के साथ और ऐसे करके चल रहे होते जमीन के ऊपर। और फरमाते थे कि काश कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, काश कि मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, काश कि मैं घास का तिनका होता, काश कि मैं किसी चिड़िया के पर का बाल होता। तो ऐसी उनकी सोच थी, और वाकई ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको फिर सबसे बड़ा सबसे अजीम मुकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें भी अपने अकाबरीन जैसा बनने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी उनके जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।